Iran Radio Podcast.
افریقہ پہنچنے والے یورپین وہاں کے استھانیہ قبیلوں کی لڑائی کا خوب فائدہ اٹھاتے تھے اور کسی ایک قبیلے کے سمرتھن میں کھڑے ہو جاتے تھے، لیکن آگے چل کر اس قبیلے کو بھی حقیقت کا احساس ہوتا تھا۔ دوستو، دنیا کے اتہاس پر پوڈ کاسٹ کا یہ 52واں ایپیسوڈ ہے۔ ایران ریڈیو سے میں ہوں احمد عباس، آپ سبھی کو میرا سلام۔ ہم بات کر رہے تھے افریقہ کی اور وہاں یورپینز کی رڑنیتی کی، جو قبیلوں کو آپس میں لڑاتے تھے، لیکن آگے چل کر قبیلے کے لوگوں کو یہ احساس ہوتا تھا کہ ان کے ساتھ دھوکہ کیا گیا ہے، لیکن جب تک یہ احساس ہوتا تھا تب تک کافی دیر ہو چکی ہوتی تھی۔ گوروں کے ساتھ سمبندھ رکھنے والے قبیلے کبھی کبھی ان قبیلوں کے خلاف بھی یورپیوں کا ساتھ دیا کرتے تھے جن سے ان کی کوئی دشمنی نہیں ہوتی تھی۔ وہ یدھ میں ان کا مارگ درشن کرتے تھے اور قبیلوں کی سنکھیا اور ہتھیاروں کی جانکاری دیتے تھے۔ یورپیوں کے خلاف افریقی صرف اس لیے یدھ نہیں ہارے کیونکہ ان کے پاس سیمت اور پرانے ہتھیار تھے، وہ رات میں یورپی سیناؤں پر حملہ کرتے تھے کیونکہ شویت لوگ اپنے انت ہتھیاروں کا رات میں ویسا استعمال نہیں کر سکتے تھے جیسا دن میں کر سکتے تھے، لیکن بہت سے اشویت رات میں باہر نکلنے اور یدھ کو اشبھ اور برا شگن مانتے تھے۔ ان اندھ وشواسوں نے انہیں ایک بہت ہی پربھاوی ہتھیار رات میں یدھ سے ونچت کر دیا تھا۔ اس کے باوجود یدھ میں ہمیشہ گوروں کی ہی جیت نہیں ہوتی تھی۔ ایتھوپیا میں بکھری ہوئی اور پرتدوندوی جنجاتیاں نہیں تھیں جہاں گورے ایک جنجاتی کے ساتھ مل کر دوسری جنجاتی کے ورودھ ایک جٹ ہو کر ان کی بھومی پر اپنا ورچسو استھاپت کر سکیں۔ ایتھوپیا ایکیکرت بھومی اور ایک بڑا سامراجیہ تھا جسے اس سمے ایبیسینیا کے نام سے جانا جاتا تھا۔ اٹالین سینکوں نے 1896 میں ایتھوپیائی تٹ پر اپنی سینا اتاری۔ ان کے ہتھیار ایتھوپیائی سینکوں کی تلنا میں کافی ادھک انت تھے، اس لیے ان کی جیت نشچت لگ رہی تھی۔ اٹالین کمانڈر کا نام جنرل اوریسٹ باراتیاری تھا، ایک ایسا جنرل جو بعد میں یورپ کے سب سے ایوگیہ افسروں میں سے نیک نکلا۔ باراتیاری نے اشویتوں میں سے جاسوسوں کا چین کیا تھا جو واسطو میں ایتھوپیائی سمراٹ کے جاسوس تھے اور انہیں بھرامک رپورٹ دیتے تھے۔ ان جھوٹی رپورٹوں کے آدھار پر باراتیاری نے اپنے سینکوں کو اشویتوں کے خلاف لڑنے کے لیے بھیجا اور واسطو میں انہیں موت کے گھاٹ اتار دیا۔ ایتھوپیا نے اٹلی کو بری طرح پراجت کیا۔ یورپی اتہاسکاروں نے اس یدھ کو آدھونک اتہاس کا سب سے آشچرجنک اور مورکھتاپورن یدھ بتایا ہے۔ یورپیوں کو اس بات کی چنتا تھی کہ کہیں جیت کی یہ خبر سن کر دوسرے افریقی دیش بھی ان کے مقابلے میں کھڑے نہ ہو جائیں، اس لیے انہوں نے ایک مانسک یدھ چھیڑ دیا۔ یورپی اخباروں نے ایتھوپیا کی جیت کو بربرتا قرار دینا شروع کر دیا، حالانکہ یورپیوں نے کانگو، نامیبیا، چاڈ، نائجر اور ان افریقی دیشوں میں لاکھوں افریقیوں کا جن سنہار کیا تھا۔ ایک یورپی اخبار نے لکھا کہ ایتھوپیا کے سینک بہادر لیکن بربر تھے۔ ایتھوپیا نے سبھی اطالویوں کو دکھ پہنچانے کی قیمت پر جیت حاصل کی تھی، لیکن یورپی لوگوں کا ڈر نرادھار تھا کیونکہ افریقہ کے باقی دیشوں نے ایتھوپیا کا انوسرن نہیں کیا، وہ بکھرے ہوئے تھے اور ایک دوسرے کے ویروتھی تھے۔ اسی وجہ سے افریقہ کا ہر کھیتر گوروں کے لیے ایک چھوٹے سے نوالے کی طرح تھا جسے وہ آسانی سے نگل سکتے تھے۔ جب یورپیوں نے افریقہ پر قبضہ کیا تو ان میں سے ہر ایک کا ان علاقوں پر شاسن کرنے کا اپنا طریقہ تھا۔ فرانسیسی، بیلجیم، پرتگالی اور اٹالینز کی پدھتیاں ایک سمان تھیں، لیکن انگلینڈ میں افریقی لوگوں کے ساتھ ان کا الگ ویوہار کیا جاتا تھا۔ انگریز اپرتکش شاسن چاہتے تھے، انہوں نے قبیلوں کے سرداروں کو ان کی کچھ پرانی شکتیاں باقی رکھنے کی اجازت دے دی تھی۔ انگریز ان نیتاؤں کو استھانیہ شاسک کہتے تھے۔ کبھی یہ استھانیہ شاسک کسی دیش کا راجا ہوتا تھا، قانونی روپ سے جس کے ہاتھ میں ستہ ہوتی تھی اور جس کے شاسن کو برٹش سمرتھن حاصل ہوتا تھا۔ ब्रिटिश सरकार ने इन देशों में अपने प्रतिनिधियों पर जोर दिया कि राजा स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन जमीन को बेचने, कानून बनाने और कर वृद्धि जैसे महत्वपूर्ण निर्णय ब्रिटिशों के साथ होने चाहिए। बाकी यूरोपीय लोग अंग्रेजों की तरह नहीं थे। ये स्वतंत्रता और अधिकार फ्रांस, बेल्जियम, पुर्तगाल या इटली के कब्जे वाले देशों में मौजूद नहीं थी। कबीलों के प्रमुख और यहाँ तक के राजा भी सिर्फ एक कर एकत्र करने, जबरन श्रम की निगरानी करने और सैनिकों की भर्ती करने का साधन मात्र थे। यहाँ तक कि उन्हें अपने ही लोगों के बीच न्याय करने के अधिकार से वंचित कर दिया गया था। ये यूरोपीय देश कब्जे वाले पूरे क्षेत्रों को अपने देश का हिस्सा मानते थे और वहाँ के नेताओं और राजाओं को अपने देश का कर्मचारी बताते थे। ये राजा और सरदार स्पष्टता यूरोपीय शासन से असंतुष्ट नहीं थे, क्योंकि अतीत में उन्हें विभिन्न प्रतिद्वंद्वियों से लड़ना पड़ता था, लेकिन अब उनके पास उसी वक्त तक शक्ति होती थी जब तक वे यूरोपीय लोगों के आदेशों का पालन करते थे। उन्हें यूरोपीय लोग वेतन देते थे और उनसे वसूले गए करों में से एक पैसा भी लेने या खर्च करने का उन्हें कोई अधिकार न था। इस तरह अप्रत्यक्ष शासन अंग्रेजों के लिए अधिक लाभदायक था। अल्बर्ट ग्रे एक अंग्रेजी राजनीतिज्ञ थे। उन्होंने कहा था, एक असभ्य राष्ट्र की प्रगति का सबसे सुरक्षित तरीका यह है कि वो अपने पैरों पर खड़ा हो जाए। उनका मतलब ये था कि अफ्रीकियों को अपने देश पर कब्जा करने वाले देश के सभी विभागों और संगठनों को भुगतान करना चाहिए। उन्हें सेना, पुलिस, अदालतों, सरकारी विभागों और औपनिवेशिक प्रशासन पर होने वाले खर्च का भुगतान करना चाहिए। ब्रिटेन ने घोषणा की थी कि इन क्षेत्रों को जल्द ही स्वशासित बना दिया जाएगा, इसीलिए ब्रिटिश गवर्नरों को बहुत ही कम बजट के साथ इन क्षेत्रों में भेजा जाता था। इतना कम के इस पर विश्वास करना मुश्किल है। 10 मिलियन की आबादी वाले क्षेत्र उत्तरी नाइजीरिया के गवर्नर का वार्षिक बजट 1,00,000 पाउंड था। इसके अलावा नाइजीरिया के गवर्नर के पास प्रशासनिक कर्तव्यों के लिए 5 अधिकारी थे और उनकी सेना में 2,000 अफ्रीकी सैनिक और 120 ब्रिटिश अधिकारी शामिल थे। मलावी में ब्रिटिश गवर्नर का वार्षिक बजट सिर्फ 10,000 पाउंड था। वो एक ब्रिटिश अधिकारी और 75 भारतीय सैनिकों के मामले के प्रभारी थे। अंग्रेजों ने इन क्षेत्रों के कबीलों के सरदारों या शासकों को जो शक्ति प्रदान की थी, उसका मतलब था कर वसूलना और लोगों को श्वेत बागानों और खदानों में जबरन श्रम के लिए भेजना। इन कार्यों के लिए अंग्रेज़ों को कुछ खर्च भी नहीं करना पड़ता था। अंग्रेज़ों ने इन नेताओं को आदेश दिया कि वे लोगों को अपने खेतों में सिर्फ एक ही प्रकार की फसल उगाने के लिए मजबूर करें, एक ऐसा उत्पाद जिसकी अंग्रेज़ों को ज़रूरत होती थी। ये स्थानीय शासक ही थे जो लोगों को सिर्फ अंग्रेज़ी सामान खरीदने के लिए मजबूर करते थे। जबरन बेगारी लगभग अफ्रीकी लोगों की मजबूरी बन गई थी। कुछ यूरोपीय देशों ने बाकायदा जबरन श्रम की योजना बनाई थी। इस योजना के तहत अश्वेतों से मरते दम तक काम लिया जाता था। सियेरा लियोन में अंग्रेज़ों द्वारा निर्मित रेल मार्ग पर कई अश्वेत श्रमिकों की मृत्यु हो गई। फ्रांसीसियों ने कांगो में पॉइंटे नोइरे रेलवे परियोजना में हर साल लगभग 10,000 कालों से मजदूरी करवाई, जिनमें से लगभग 1/4 भूख, थकावट और बीमारी से मर गए। सन 1900 में एक अंग्रेज़ डॉक्टर ने अपने देश के संबंधित मंत्रालय को गोल्ड कोस्ट पर काम करने वाले श्रमिकों के बारे में एक रिपोर्ट भेजी। पूरे साल लगातार चलने से, औसतन प्रति माह लगभग 650 किलोमीटर चलने से मजदूरों की हालत खस्ता हो जाती है। सड़कें पक्की करने से स्थिति और ख़राब हो गई है। अधिकांश श्रमिकों के पैरों में छालों के कारण अतिरिक्त मांस आ गया है। हम उनके पैरों के घावों को भरने के लिए कोलतार का उपयोग करते हैं। इससे दरारें भर जाती हैं और घाव रोगाणु मुक्त हो जाते हैं। 1930 में यूरोपीय देशों ने जबरन श्रम निषेध कन्वेंशन पर हस्ताक्षर किए। इस संधि के अनुसार सभी यूरोपीय उपनिवेशवादियों ने प्रतिबद्धता जताई कि हर प्रकार के जबरन श्रम को कम से कम समय में पूरी तरह से रोका जाएगा। हालांकि इन देशों ने जल्द ही कई तरह के बहानों से इस समझौते का उल्लंघन शुरू कर दिया। उदाहरण के लिए, फ्रांसीसी सैनिकों के वेश में अश्वेतों को बैरकों में ले जाते थे और फिर उन्हें बैरकों से खेतों और खदानों में काम करने के लिए भेज देते थे। यहाँ तक कि 20वीं सदी के उत्तरार्ध में भी, जब यूरोपीय और अमेरिकन जबरन श्रम के माध्यम से और अधिक बदनाम नहीं होना चाहते थे, तो उन्होंने काले मजदूरों को मजदूरी देने का फैसला किया। लेकिन यह मजदूरी बहुत अजीब और गरीब थी। 1965 में एक अमरीकी कंपनी ने अफ्रीकी बंदरगाहों पर काम करने वाले अश्वेतों को अमेरिकी श्वेत मजदूरों के वेतन का छठा हिस्सा दिया। नाइजीरिया में कोयला खनिक एक सप्ताह में उतना ही पैसा कमाते थे जितना इंग्लैंड और जर्मनी के मजदूर एक घंटे में कमा लेते थे। केन्या में अंग्रेजों ने अप्रत्यक्ष रूप से अश्वेतों को मुफ्त में काम करने के लिए मजबूर किया। वे नए कर लगाने के लिए कोई भी बहाना खोजते थे। भूमि पर, घरों पर, पशुओं पर और यहाँ तक के स्वयं अश्वेत लोगों पर भी कर लगा दिया करते थे। जो लोग इन करों का भुगतान करने में असमर्थ थे उन्हें इसकी भरपाई के लिए जबरन मजदूरी करना पड़ती थी। केन्या में एक ब्रिटिश कर्नल ने लिखा, हमने उनकी ज़मीन छीन ली है, अब हमें उनसे उनके हाथ छीन लेना चाहिए। जबरन श्रम इस देश में हमारे कब्जे का एक आवश्यक हिस्सा है। यूरोपीय लोग अश्वेतों का शोषण करने में एक दूसरे से प्रतिस्पर्धा करते थे और ये सुनिश्चित करने के लिए कि कौन सा देश बेहतर लाभ उठा रहा है, वे लगातार अपने आंकड़ों की तुलना दूसरों से करते थे। पश्चिमी अफ्रीका में फ्रांसीसी गवर्नर जनरल ने 1947 में लिखा था, ये क्षेत्र अश्वेतों और उनके पशुओं पर लगाए गए करों से प्रतिवर्ष 175 मिलियन फ्रैंक उत्पन्न करता है। 21 मिलियन दिन जबरन श्रम कराया गया और 12,000 सैनिक उपलब्ध कराए गए हैं। ये इस तथ्य के बावजूद था कि जबरन श्रम पर प्रतिबंध लगाने वाले कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए 9 साल बीत चुके थे। अफ्रीकियों को सिर्फ जबरन श्रम के लिए भर्ती नहीं किया गया था बल्कि उनमें से कईयों का तो और भी भयानक अंजाम होता था। उन्हें ज़बरदस्ती युद्ध की आग में झोंक दिया जाता था। यूरोपी एक दूसरे के साथ प्रतिस्पर्धा कर रहे थे, विशाल और बड़े क्षेत्रों पर कब्जा करने की प्रतिस्पर्धा, जिसके नतीजे में प्रथम विश्व युद्ध हुआ। यूरोपीय अश्वेतों को बड़ी संख्या में युद्ध के मोर्चों पर भेज रहे थे। ये लड़ाई अश्वेत भूमि के अधिग्रहण को लेकर शुरू हुई थी। इस युद्ध के दौरान लगभग 10 लाख अश्वेतों ने फ्रांस, इंग्लैंड, इटली और जर्मनी की सेनाओं में जबरन सेवा की। पूर्वी अफ्रीकी युद्ध में लगभग 5 लाख काले लोग मारे गए। उनमें से आधे लोग वे थे जिन्होंने युद्ध में दोनों पक्षों के लिए मजदूरी का काम किया था, जबकि बाकी आधे लोग भूख और बीमारी से मर गए थे। आज जबरन श्रम निषेध कन्वेंशन पर हस्ताक्षर हुए 190 वर्ष से अधिक समय बीत चुका है, लेकिन हमारी वर्तमान दुनिया में न केवल काले लोग बल्कि सभी मनुष्य, चाहे उनकी जाति, रंग, लिंग या आयु कुछ भी हो, संभवतः गुलामी या जबरन श्रम का अनुभव कर सकते हैं। आधुनिक गुलामी से लड़ने वाले संगठनों द्वारा उपलब्ध कराए गए आंकड़ों के अनुसार 50 मिलियन से अधिक लोग गुलामी जैसी परिस्थितियों में जी रहे हैं। आज कई पुरुष, महिलाएं और बच्चे कठिन काम करने के लिए मजबूर हैं। वे बिना मजदूरी प्राप्त किए अपना पूरा जीवन काम करते हैं। यूरोप में आधुनिक गुलामी पर संयुक्त राष्ट्र की नवीनतम रिपोर्ट में उल्लेख किया गया है कि आधुनिक गुलामी में पिछली शताब्दियों की तरह मुख्यतः गरीब या विकासशील देशों से नागरिकों को जाल में फंसाना और उनकी खरीद फरोख्त करना शामिल है। संयुक्त राष्ट्र के अनुसार ये एक ऐसी प्रक्रिया है जो मानव तस्करों के लिए प्रतिवर्ष 2.5 बिलियन यूरो का मुनाफा अर्जित करती है और इसमें हर साल वृद्धि हो रही है। संयुक्त राष्ट्र मादक पदार्थ एवं अपराध कार्यालय की एक रिपोर्ट के अनुसार यूरोप में मानव तस्करी के पीड़ितों की संख्या में प्रतिवर्ष 50% की वृद्धि हो रही है। बाहरी मुनाफे और इसकी वार्षिक वृद्धि को देखते हुए मानव तस्करी यूरोप में सबसे अधिक लाभदायक आपराधिक गतिविधियां बन गई हैं। विभिन्न गिरोहों के अपराधी कई लोगों को नियंत्रित करते हैं और उनका शोषण करते हैं। बच्चों और महिलाओं को वेश्यावृत्ति के लिए तथा पुरुषों को जबरन श्रम के लिए मजबूर किया जाता है। पूर्वी यूरोप, लैटिन अमेरिका और अफ्रीकी देशों के नागरिक इस व्यापार के मुख्य शिकार हैं, जिन्हें आमतौर पर काम और बेहतर जीवन का वादा करके यूरोप लाया जाता है और अंततः वे मानव तस्करों के हाथों में फंस जाते हैं। इससे भी बुरी बात यह है कि यूरोप के केंद्र में ऐसी दुकानें हैं जहां इंसानों को बिक्री के लिए रखी गई वस्तुओं की तरह प्रदर्शित किया जाता है। इन दुकानों को उनकी लाल बत्तियों और शराब व नशीली दवाओं से भरे वातावरण से पहचाना जा सकता है। वे अधिकतर रेलवे स्टेशनों के पास या गरीब इलाकों में स्थित होती हैं। जब थोड़ा अंधेरा हो जाता है तो ये दुकानें धीरे धीरे खुलना शुरू होती हैं। महिलाओं को खिड़कियों से किसी वस्तु की तरह प्रदर्शित किया जाता है और राहगीर उन्हें देखने और चुनने में व्यस्त रहते हैं, मानो कि वे दास बाजार से गुजर रहे हों। गिरोह के सरगनाओं और दुकान मालिकों के अलावा सरकार को भी टैक्स के रूप में इन यौन दासियों की वेश्यावृत्ति से लाभ मिलता है। इन लोगों को अक्सर बेहतर जीवन का वादा करके पूर्वी यूरोप या गरीब देशों से ब्रसेल्स या किसी दूसरे इलाके में ले जाया जाता है और न्यूनतम मजदूरी पर वेश्यावृत्ति के लिए मजबूर किया जाता है। दोस्तों, जो पॉडकास्ट आपने सुना वो ईरान रेडियो हिंदी द्वारा तैयार किया गया था। अगर आप और भी दिलचस्प विषयों पर पॉडकास्ट देखना और सुनना चाहते हैं तो हमारी वेबसाइट को विजिट कीजिए, iranradio.ir/hi।